स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 6 दिसंबर और दिन रविवार। चेन्नई में हालात अब थोड़े बेहतर, लेकिन मदद के नाम पर दी जाने वाली चीजों से आम लोग हैं परेशान।
लोग क्या कह रहे हैं, हमको खाना नहीं चाहिए, हमको कपड़ों चाहिए, क्लॉथ दीजिए, ऐसे मांगते हैं, कैंडल्स दीजिए।
पेरिस जलवायु सम्मेलन में देशों के बीच सहमति के आसार। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की शर्म नीति पर किया हमला।
यदि आप राजस्थान, गुजरात और अब हरियाणा में जो कानून बन रहे हैं उन्हें देखें तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने मजदूरों पर बहुत बड़ा हमला शुरू कर दिया है।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। तमिलनाडु में अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ से प्रभावित राजधानी चेन्नई का मुख्य एयरपोर्ट आज दिन की उड़ानों के लिए खोल दिया जाएगा और बैंक भी कुछ देर के लिए खोले जाएंगे। 100 साल में हुई सबसे ज्यादा बारिश के कारण यहां करीब 300 लोग मारे जा चुके हैं। चेन्नई में राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर के कई इलाकों में बिजली व्यवस्था दोबारा चालू कर दी गई है। चाड के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक लेक चाड द्वीप पर 3 आत्मघाती हमलों में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है और करीब 80 लोग घायल हुए हैं। सूत्रों के अनुसार ये विस्फोट एक साप्ताहिक बाजार में किए गए। फिलहाल किसी संगठन ने हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन चरमपंथी गुट बोको हराम के हमलों के बाद इस क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इराकी सरकार ने मांग की है कि तुर्की उसके उत्तरी शहर मोसुल के निकट भेजे गए अपने सैनिकों को वापस बुलाए। इराक ने इस सिलसिले में तुर्की के राजदूत को भी तलब किया, लेकिन तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावतोग्लू ने कहा कि मोसुल शहर के पास तुर्की की सेना की तैनाती तो उस क्षेत्र में इराकी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करने के लिए भेजी गई सेना में सामान्य बदलाव के तौर पर की गई है। आज ये जो हो रहा है वो उन लोगों की उकसाने वाली मंशा के कारण हो रहा है जो एक सामान्य सैन्य रोटेशन को गलत समझ रहे हैं। हमने बाशिका शिवर में भी अपने इराकी भाइयों को देश के खिलाफ प्रशिक्षित किया है और हम उन्हें प्रशिक्षित करना जारी रखेंगे। ये थे अहमद दावतोग्लू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन में पुलिस के मुताबिक पूर्व लंदन के मेट्रो स्टेशन पर चाकू मारने की एक घटना हुई है। एक शख्स ने लेडनस्टोन स्टेशन पर यात्रियों पर चाकू से हमला किया। इसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि फिलहाल देश में चरमपंथी हमलों का गंभीर खतरा बना हुआ है। अर्जेंटीना में अधिकारियों ने 6 सीरियाई लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार ये लोग नकली ग्रीक पासपोर्ट्स पर अर्जेंटीना में दाखिल हुए। पिछले महीने होंडुरास में 5 सीरियाई लोगों को हिरासत में लिया गया था जो वहां से अमेरिका में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। वो भी झूठे ग्रीक पासपोर्ट पर सफर कर रहे थे। इससे अमरीका में चिंता बढ़ गई है क्योंकि पेरिस हमलों में शामिल लोग भी ग्रीस में रजिस्टर्ड प्रवासियों के साथ यूरोप आए थे। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि इस महीने के आखिर में सीरिया में हो रहे युद्ध को ख़त्म करने पर बातचीत का नया दौर न्यूयॉर्क में होगा। इस बातचीत में पिछले महीने वियना में जो समझौते हुए थे उन पर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है दिसंबर की 6 तारीख और दिन रविवार। कार्यक्रम की शुरुआत चेन्नई से। बाढ़ का कहर झेल रही चेन्नई में हालात अब कुछ बेहतर हुए हैं। कई इलाकों से पानी निकल चुका है, जबकि कई अन्य जगहों पर बारिश के जमा पानी का स्तर भी घटने लगा है। राहत कामों में भी तेजी आई है। ताज़ा स्थिति की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने कुछ देर पहले चेन्नई में मौजूद बीबीसी संवाददाता रविंदर बावा से बात की।
राहत कार्य में तेजी जरूर आई है क्योंकि मौसम का साथ रहा है। राहत कार्य सरकार की तरफ से भी हो रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की तरफ की ये देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, आपस में नेटवर्किंग करके, व्हाट्सएप, फेसबुक, इस तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जिस तरह लोगों ने एक साथ जुटे हैं और राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं और बहुत ज्यादा खाना हर जगह से पहुंच रहा है, बना बनाया गर्म खाना, चाहे चावल दाल हो, चावल सांभर हो, क्योंकि कुछ ऐसे अब भी इलाके हैं जहां घुटनों तक पानी है, तो ऐसे इलाकों में लोग अभी भी अपने घरों में, खास तौर से वो लोग जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, वो अभी तक अपने घर को वापस से शुरू नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए खाना बनाना मुश्किल है। तो ऐसी जगहों पर ऐसा गर्म खाना, ताज़ा खाना बनाकर लोग बांटने आ रहे हैं और ये वही लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, जिनके घरों में पानी सूख चुका है, जिनकी कॉलोनियों में पानी नहीं भरा था, वो लोग जुट करके दूसरे इलाकों में पहुँच रहे हैं। तो एक बहुत ही इंसानियत का एक नया रूप चेन्नई में इस बार देखने को मिला है। बड़े पैमाने पे छात्रों ने इसमें योगदान दिया और बहुत सारे छात्र, घड़ी अगर आप सड़क पर चेन्नई में घूमे तो आप हर थोड़ी दूरी पर आपको एक गाड़ी दिखेगी और गाड़ी के पीछे लोगों की कतार।
खाना लोगों के पास बहुत पहुंच रहा है, लेकिन दूध की कमी बताई जा रही थी, काफी दूध महंगा बिक रहा था, पेट्रोल के लिए पेट्रोल पंप्स पर वाहनों की कतार लगी हुई थी, वहाँ अब क्या स्थिति?
देखिए, पेट्रोल पंप पे काफी कतारें कम हुई हैं, दूध भी सरकार ने कुछ रिलीफ सेंटर्स में दूध पहुंचाने की कोशिश की है, तो ये एक सरकार की तरफ से भी पहल हुई है, तो उससे भी थोड़ी सी जो जरूरत थी दूध की, कहीं कुछ हद तक वो उस कमी को पूरा किया गया है। लेकिन पानी की कमी अब भी हमें हर तरफ से, जहां भी हम जिन जिन इलाकों में गए जहां घुटनों तक पानी है या जहां कल तक पानी है, वहां पर अब भी पीने के पानी की जो मांग है वो अभी भी ज्यादा है।
मैं आपसे जानना चाहूंगा, एयरपोर्ट क्या फंक्शनल हो पाया है, रेलवे स्टेशनों की क्या स्थिति है, और जो हाईवेज बंद थे बारिश के बाद से, उनकी क्या स्थिति है?
काफी सड़क साफ हुई है चेन्नई और उसके आसपास के इलाकों में, और उन सड़कों पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई है। तो हाईवे से शुरू करते हुए यही बताना चाहूंगी कि हाईवे कुछ हद तक खुल गए हैं, हालांकि बेंगलुरु से चेन्नई का जो हाईवे था वो खुला ही हुआ था। दूसरा, जहां तक कि एयरपोर्ट का सवाल है, हम वहां पर गए थे, ने देखा कि काफी शांति छाई हुई थी, क्योंकि अभी तक फ्लाइट रिज्यूम नहीं की है। कुछ पायलट से और एयरपोर्ट के डायरेक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं रनवे की। अब ये कहा जा रहा है कि सुबह 6 बजे से फ्लाइट का की आवाजाही शुरू होगी, लेकिन अब भी ये संभावना है, क्योंकि ये पूरी तरह से मौसम पर निर्भर होगा या जाएगा। जहां तक ट्रेनों का सवाल है, सुबह 6 बजे से 5 ट्रेनों को चलाया जाएगा।
ये थे चेन्नई से रविंदर बावा। तो चेन्नई और तमिलनाडु के दूसरे तटीय हिस्सों में अगले 48 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम का हाल, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने भारतीय मौसम विभाग के अधिकारी बीपी यादव से बात की।
बारिश का अनुमान लगाया गया है और हमने बताया कि पिछले 2 दिनों में कुछ कम बारिश हुई थी चेन्नई में, लेकिन आने वाले जो 48 घंटे हैं उनमें बारिश में चेन्नई के इलाकों में कुछ बढ़ोतरी होगी। कई जगह बारिश होगी मध्यम दर्जे की, मॉडरेट रेनफॉल, और एक आध जगह हैवी रेनफॉल, 7-8-9-10 सेंटीमीटर इस तरह की बारिश भी होने की अनुमान लगाए गए हैं।
जी यादव साहब, आप क्या बता पाएंगे कि बारिश का असर किन जिलों में सबसे ज्यादा होगा?
वैसे तो जो कोस्टल तमिलनाडु है उसी में ही सबसे ज्यादा बारिश है, लेकिन ये मैं चेन्नई के लिए बता रहा हूँ, चेन्नई शहर के लिए अनुमान लगाया है मैंने। बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं कडलोर, पुडुचेरी, नागापट्टिनम, यहाँ भी हैवी रेनफॉल के अनुमान है।
कि क्या ये बारिश का मौसम है जो बारिश हो रही है या किसी खास वजह से?
ये चेन्नई के लिए बारिश का मौसम है, चेन्नई और पूरे तमिलनाडु के लिए खासकर यही बारिश का प्रिंसिपल या मुख्य रहने की जन यही है।
तो बारिश से तमिलनाडु और खासतौर पर चेन्नई के लोगों को कब तक राहत मिलने का अनुमान है?
राहत तो ये कि पहले जितनी बहुत जो भारी बारिश हुई है उससे तो राहत मिल चुकी है, करे से उतनी तो बारिश नहीं हो रही है अभी, तो मुख्य हल्की या मॉडरेट टाइप की रेनफॉल ज्यादा है, लेकिन अभी भी ये जो लाइट जो मॉडरेट रेनफॉल मैंने बताया अगले 48 घंटे रहेगी, उसके बाद बारिश में कमी आ जाएगी और हल्की बारिश हो जाएगी। अभी बारिश बंद नहीं होगी क्योंकि अभी तो वह मानसून, ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो सीजन है वो पूरे दिसंबर तक रहता है, तो बारिश में हल्कापन आ जाएगा, रुकने के या बिल्कुल बंद हो जाने के अभी आसार नहीं है।
तो मौसम विभाग के अधिकारी थे ये बीपी यादव। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो सरकार के अलावा बहुत सारे एनजीओ और आम लोग भी प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को राहत सामग्री के नाम पर भेजा जाता है जिसकी शायद पीड़ितों को कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसा ही कुछ चेन्नई में भी देखने को मिल रहा है। सुनिए चेन्नई से इमरान कुरैशी की ये रिपोर्ट।
चेन्नई के लोग मानवता के रीला से अभिभूत हो गए हैं। सारे देश से बहुत तरह के राहत सामान आ रहे हैं। एनजीओ के कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग भी छोटे छोटे ग्रुप बनाकर राहत का काम कर रहे हैं। ये आम वॉलंटियर भी प्रभावित लोगों की बात सुनकर हैरान हो गए हैं कि उन्हें खाने का सामान नहीं चाहिए। तो सवाल है, बाढ़ से प्रभावित लोगों की फिलहाल सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? हमने यह सवाल पूछा सुब्रमणि से, जो तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी हैं और अपने ऑफिस के काम के बाद राहत के काम में जुटे हैं।
लोग क्या कह रहे हैं, हमको खाना नहीं चाहिए, हमको कपड़ों चाहिए, क्लॉथ दीजिए, ऐसे मांगते हैं, कैंडल्स दीजिए, सब ऐसे मांग रहे हैं। हम कैंडल भी लेकर आ गए, उधर हम दे दिए, इधर हमको नहीं देना नहीं रहे।
तो आप क्या, आपको कुछ अंदाज़ा मिल रहा है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है?
रिक्वायरमेंट क्लॉथ्स पूछता है, खाने नहीं पूछता है, खाने बहुत आदमी आकर दे रहे हैं, इसलिए हमको खाना नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्लॉथ चाहिए, कैंडल चाहिए, वाटर पानी चाहिए, यही।
सुब्रमणि के साथ माला कोंडया और वसंत भी हर रोज़ अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के दूसरे निवासियों से पैसा इकट्ठा करते हैं और राहत के काम में जुट जाते हैं। माला कोंडया कहते हैं,
25,000 माय अपार्टमेंट्स का कलेक्ट टोटली अमाउंट, 10,000 फूड, वाटर बॉटल और पैक।
कल हमने 25,000 रुपये इकट्ठा किए, उसमें से हम 10,000 रुपये खाना यानी सांभर चावल बनाने के लिए खर्च किए, 6,000 रुपयों का पानी खरीदा, 2,500 रुपयों के बिस्किट और बाकी 5,000 रुपये वाहन और दूसरी चीज़ों पर खर्च किया। ये थे माला कोंडया के शब्द। एक और दोस्तों के समूह में हैं विजय, जो बेंगलुरु में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने जब टेलीविज़न पर देखा उनके चेन्नई शहर की हालत, वो फौरन चेन्नई पहुँचे और राहत के काम में लग गए। विजय कहते हैं,
सो आई प्रोवाइड कैंडल्स एंड फूड एंड बेडशीट्स, मेबी टुमारो आई विल ट्राई।
दोस्तों के साथ हम राहत के काम में जुट गए। कल हम मोमबत्ती और खाने का सामान बांटे थे, आज हम बेडशीट बांटेंगे क्योंकि खाना देने वाले बहुत हैं। 11 साल पहले जब सुनामी ने तमिलनाडु के तटीय इलाकों को बर्बाद कर दिया था, देश और दुनिया से लोगों ने बहुत सारी चीज़ें राहत के तौर पर भेजी थी। जब कन्याकुमारी जिले के अधिकारियों ने राहत सामग्री बांटी तो हजारों की तादाद में प्रभावित लोग कंबल को रोड पर फेंक कर चले गए। इसकी वजह यह थी कि तमिलनाडु का मौसम आम तौर पर गर्म होता है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से लोगों को ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं होती है। इस बार भी दक्षिण भारत के दूसरे शहरों में राहत के तौर पर लोग कंबल इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों को पीने का पानी, मोमबत्ती और बेडशीट की ज़रूरत है, कम से कम कंबल तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चेन्नई से इमरान कुरैशी।
और अब चलते हैं पेरिस। पेरिस में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में वार्ताकारों ने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक समझौते का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हालांकि इस मसौदे में भी कुछ परस्पर विरोधी सुझाव हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस पर एक सहमति बन सकती है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए प्रगति सक्सेना से।
30 नवंबर से पेरिस में पर्यावरण पर शुरू हुए सम्मेलन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूरी दुनिया इस वक्त मौसम में आए भयंकर बदलाव को झेल रही है और ये एहसास अब दुनिया के छोटे बड़े देशों को हो चला है कि प्रदूषण से पैदा हुई ग्लोबल वार्मिंग की समस्या एक देश या इलाके को नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी को लील सकती है। इसलिए एक हफ्ते की रिकॉर्ड स्पीड में सम्मेलन के वार्ताकारों ने दुनिया के देशों के बीच एक समझौते का खाका तैयार कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए उम्मीद जताई कि जल्द ही एक विस्तृत समझौते पर सहमति बन जाएगी।
Today is about action by all sectors of society. It's about innovation and imagination.
बान की मून कह रहे हैं, आज समाज के सभी वर्गों को काम करना होगा। आज जरूरत है रचनात्मकता की, कल्पना की, सहयोग और साझेदारी की। हम एक सामूहिक भविष्य, जिम्मेदारी और घर की बात कर रहे हैं। आज पहले से कहीं ज्यादा सितारे इस बात के पक्ष में हैं कि हम मौसम में बदलाव पर मजबूत और सम्मिलित कदम उठा सकें। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना तभी किया जा सकता है जब दुनिया के देश क्षेत्रीय हितों से ऊपर उठकर समग्र हित की बात सोचें। उन्होंने इस पर तैयार किए गए समझौते के ब्लूप्रिंट का स्वागत किया।
Je veux saluer le travail des négociateurs qui ont remis leur texte ce matin.
फ्रांसवा ओलांद कह रहे हैं, वार्ताकारों ने जो काम किया है मैं उसका स्वागत करना चाहूंगा। आज सुबह ही उन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया। ये अंतिम समझौता तो नहीं है, लेकिन अंतिम समझौते तक पहुंचने की अहम शुरुआत है। ये अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के अध्यक्ष पर है कि वो सभी सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करें और हमारे पास जो विकल्प मौजूद हैं उन पर गौर करते हुए एक व्यापक सहमति तैयार करें। समझौते के ब्लूप्रिंट को इतनी जल्दी तैयार कर लेना तो यही जताता है कि दुनिया के सभी देश ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को लेकर गंभीर हैं, लेकिन पर्यावरण को लेकर विकासशील देशों और विकसित देशों के बीच मतभेद हैं। 11 दिसंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन से सिर्फ ये उम्मीद ही की जा सकती है कि सभी देश अपने अपने आर्थिक हितों को दरकिनार कर समग्र हित और पृथ्वी की खुशहाली को तवज्जो दे पाएंगे, ताकि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग, चेन्नई की बारिश और ब्रिटेन की फ्लैश फ्लड में फंसा एक आम नागरिक एक बार फिर चैन की ताज़ा सांस ले सके।
तो ये थी प्रगति सक्सेना और अब बात उनकी जिन पर रहेगी आज सबकी नज़र।
आज बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की 23वीं बरसी है। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद एक बड़ा आयोजन करने वाली है। इस मौके पर अयोध्या में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन ने अयोध्या में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक भी की है। पंजाब में कृषि मंत्री तोता सिंह के इस्तीफे की मांग पर आम आदमी पार्टी के युवा कार्यकर्ता चंडीगढ़ में आज मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के घर का घेराव करेंगे। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि अकाली मंत्री तोता सिंह के भ्रष्टाचार के कारण किसान बदहाल हैं, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। फ्रांस में आज क्षेत्रीय चुनावों का पहला दौर आयोजित किया गया है। संभावना है कि दक्षिणपंथी राजनीतिक दल नेशनल फ्रंट तीनों क्षेत्रों में चुनाव जीत सकता है। इससे फ्रांस के राजनीतिक परिदृश्य में नाटकीय बदलाव आ जाएगा। इराक मांग कर रहा है कि तुर्की तत्काल अपने सुरक्षा बलों को इराकी क्षेत्र से हटाए। इराक का कहना है कि ये सेना तुर्की ने गैर कानूनी ढंग से इराक में भेजी है। इराक को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए विदेशी सहायता दी जा रही है और फिलहाल वो अपनी संप्रभुता को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इराक और सीरिया में चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए अमरीकी नेतृत्व वाले गठबंधन के तहत जर्मनी के लड़ाकू विमान भी अपना प्राथमिक सर्वेक्षण अभियान शुरू करेंगे। 4 दिसंबर को जर्मनी की संसद ने इस मिशन को मंजूरी दी थी।
और अब भारतीय राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए उसे मजदूर विरोधी करार दिया है। राहुल गांधी ने कल एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर श्रम कानूनों को कमजोर कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने देश को सिर्फ समस्याएं दी हैं और जब प्रधानमंत्री समाधान करना चाहते हैं तो वो उनका रास्ता रोक रही है। सुनिए रिपोर्ट अमल चौधरी की।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर मजदूरों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने सरकार के विकास के दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फिलहाल सिर्फ गिने चुने लोगों का ही विकास हो रहा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर श्रम कानूनों को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा,
प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि भारत का मजदूर बेईमान है, भारत का मजदूर कामचोर है और उसे सिर्फ लाठी मार कर काम कराया जा सकता है। यदि आप राजस्थान, गुजरात और अब हरियाणा में जो कानून बन रहे हैं उन्हें देखें तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने मजदूरों पर बहुत बड़ा हमला शुरू कर दिया है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी ने भी जोरदार पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी लोगों से कटे हुए हैं, इसलिए दुष्प्रचार करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा,
कांग्रेस ने इस देश को समस्याएं दी और नरेंद्र भाई मोदी समाधान दे रहे हैं। राहुल गांधी जब सत्ता में थे तब उन्होंने कुछ किया नहीं और अब जब करने का एक प्रयास सरकार कर रही है तो उसमें अवरुद्ध खड़ा करते हैं, संसद को नहीं चलने देते हैं और मजदूरों की मिनिमम पेंशन 1000 रुपए नरेंद्र भाई मोदी जी ने की।
जाहिर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही खुद को मजदूरों का हितैषी साबित करने की कोशिश में है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इस बहस से मजदूरों के अच्छे दिन आएंगे।
ये थे अमल चौधरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रस्तावित इवन ऑड पॉलिसी को लेकर कहा है कि सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे आम लोगों को कोई परेशानी हो। केजरीवाल ने कल एक कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर दिल्ली सरकार को सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया, साथ ही ये दावा भी किया कि आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में दिल्ली जैसा प्रदर्शन करेगी। सुनिए अजय शर्मा की ये रिपोर्ट।
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार की ऑड इवन नंबर योजना को लेकर बहस शुरू हो गई है। इस योजना को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं। इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने कल एक कार्यक्रम में सफाई दी। उन्होंने कहा,
ये सोचा है, दिस इज इन प्रिंसिपल द डिसीजन हैज बीन टेकन, मेनी मेनी थिंग्स नीड टू बी सॉर्टेड आउट, क्योंकि कुछ भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि जनता को तकलीफ हो, ज्यादा तकलीफ हो।
दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को इस योजना का ऐलान किया था जिसके तहत दिल्ली में कोई निजी वाहन महीने में 15 दिन से अधिक नहीं चल पाएगा। इस योजना के मुताबिक 1 जनवरी से सम और विषम संख्या की नंबर प्लेट वाले निजी वाहन सड़कों पर वैकल्पिक दिन ही चल सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल सरकार की इस योजना की कामयाबी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार ने योजना का ब्लूप्रिंट सही तरीके से तैयार नहीं किया है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंदर गुप्ता ने कहा,
दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हम सरकार के साथ हैं अगर सरकार एक वाइज डिसीजन करे, लेकिन यहाँ पर सरकार के फैसले जो है वो अपरिपक्वता से भरे हुए हैं, बिना तैयारी के हैं और जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ सकता है, जिसके इन सवालों के जवाब सरकार के पास नहीं है, योजना की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा।
दिल्ली के विधायकों के वेतन में वृद्धि को लेकर भी केजरीवाल सरकार निशाने पर है। अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर भी सफाई दी है। उन्होंने न सिर्फ विधायकों के वेतन में की गई वृद्धि को सही ठहराया बल्कि प्रधानमंत्री के वेतन में इजाफे की सलाह भी दी।
अब मैं 1,00,000 रुपए महीना अपने एमएलए को दूंगा, लेकिन अगर उसने कोई गड़बड़ करी तो उसको छोड़ूंगा नहीं। मैंने अगले दिन देखा, थोड़ी सी मुझे तकलीफ हुई, एक अखबार ने लिखा हुआ था अब दिल्ली के हर एमएलए को प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी मिलेगी। आज मैं यहाँ पे एडवोकेट करता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री की तनख्वाह बढ़नी चाहिए अगर वो 1,00,000 से कम है तो।
भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जनता का ध्यान बांटने के लिए प्रधानमंत्री के वेतन में इजाफे की बात उठा रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल के इस आरोप को भी गलत बताया कि केंद्र सरकार उनकी सरकार को सहयोग नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार को वाद विवाद में उलझने की बजाय जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। केजरीवाल ने पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में उनकी पार्टी दिल्ली चुनाव के नतीजों को दोहरा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में आना चाहें तो उनका स्वागत होगा।
आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर द दिल्ली रिजल्ट्स आर रिपीटेड इन पंजाब, नंबर वन। नंबर टू, जहां तक फेस का सवाल है, फेस समय होने पर आ जाएगा, उसकी भी आप चिंता मत कीजिए। नंबर तीन, नवजोत सिद्धू जी अगर पार्टी में आना चाहें उनका बहुत बहुत स्वागत है।
भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के इस दावे पर भी सवाल उठाए। नलिन कोहली ने कहा कि केजरीवाल के दावों का सच जनता जानती है।
जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, उनका आकलन हमेशा कुछ आगे भविष्य के लिए होता है, अपनी पीठ थपथपाना होता है, और जहाँ तक उनके अपने वादे हैं उन पर कोई किसी के पास जवाबदेही है नहीं। तो क्या क्या उन्होंने कहा और उस कथनी और करनी में कितनी दूरी है वो सबके सामने, बाकी जनता तय करती है किसको कहाँ पर रहना है।
भाजपा ने सिद्धू के आम आदमी पार्टी से जुड़ने के सवाल को भी खारिज कर दिया। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू इस मुद्दे पर बातचीत को तैयार नहीं हुए।
ये थे अजय शर्मा और अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का। और मेरी सहयोगी प्रगति सक्सेना अखबारों के साथ। जी प्रगति, बताएं।
जी इकबाल साहब, आज जो सभी अखबारों ने जिन खबरों को प्रमुखता से लिया है उनमें है अब श्रम सुधारों पर अड़ंगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि श्रम संबंधी कानूनों को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। दिल्ली सरकार 9,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी जिसमें अतिथि शिक्षकों को भी मिलेगी स्थायी नौकरी। लश्कर ने रची दिल्ली में हमले की साजिश। पाकिस्तान से कश्मीर सीमा पार कर भारत में घुसे हैं दो आतंकवादी, दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। जासूसी में राजौरी से शिक्षक गिरफ्तार, और परेशानी हुई तो वापस लेंगे फैसला, ये सम विषम नंबर की आलोचना पर केजरीवाल
जिसका भी हम लोगों ने
जी
रिपोर्ट
जी अभी हमने एक रिपोर्ट की। तो ये ऐसी खबरें हैं जो सारे अखबारों ने ली हैं। अब मैं बता देती हूँ कि विशेष अखबारों ने क्या क्या लिया है। दैनिक जागरण ने जैसे लिखा है कि ऑनलाइन कैंसिल होगा काउंटर रेल टिकट, और जलवायु परिवर्तन करार का ब्लू प्रिंट तैयार। हिंदुस्तान में खबर है कि गुवाहाटी में धमाका हुआ और उसमें 4 लोग घायल, ये 2 बम विस्फोट हुए। कांग्रेस के साथ गठबंधन कल की बात, अखिलेश ने अपने सुर बदले और ऐसा कहा,
दिल्ली में उन्होंने कार्यक्रम में जो कह दिया था। जी
हिंदुत्व का दुरुपयोग कर रहे हैं अतिवादी, ये हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में महमूदा मुफ्ती ने कहा। पंजाब में भी दिल्ली जैसी जीत दोहराएंगे हम, केजरीवाल ने कहा, ये जनसत्ता में खबर है। और पुलिस आयुक्त तो भाई के खिलाफ दर्ज नहीं होने दे रही है प्राथमिकी, ये आपने कहा।
बहुत शुक्रिया प्रगति आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत ने दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेले जा रहे 4th टेस्ट मैच पर भी अपना शिकंजा कस लिया है। कल खेल के 3rd दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 190 रन बना लिए थे, और अब भारत के पास कुल मिलाकर 403 रनों की बढ़त है और उसके 6 विकेट बाकी हैं। कल स्टंप के समय भारत के कप्तान विराट कोहली 83 और अजिंक्य रहाणे 52 रन बनाकर नाबाद थे। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच अभी तक 5वें विकेट के लिए 133 रनों की नाबाद साझेदारी हो चुकी है। इससे पहले जब 4th विकेट के रूप में भारत के चेतेश्वर पुजारा लेग स्पिनर इमरान ताहिर की गेंद पर बोल्ड हुए तो लगा कि जैसे भारत की दूसरी पारी मुश्किलों में पड़ने जा रही है। तब भारत का स्कोर केवल 57 रन था। इसके बाद विराट कोहली भी इमरान ताहिर की गेंद पर कैच आउट दे दिए गए, लेकिन वो इमरान ताहिर की नो बॉल निकली। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मॉर्ने मोरकल ने 29 रन देकर 3 विकेट झटके। इनमें मुरली विजय, शिखर धवन और रोहित शर्मा के विकेट शामिल हैं। मुरली विजय 3 और शिखर धवन 21 रन बना सके तो रोहित शर्मा तो अपना खाता भी नहीं खोल सके। वैसे भारत ने जब दक्षिण अफ्रीका को केवल 121 रन पर उखाड़ा तब भारत को पहली पारी के आधार पर 213 रनों की बढ़त मिली। भारत चाहता तो दक्षिण अफ्रीका को फॉलो ऑन दे सकता था, लेकिन नहीं दिया और विराट कोहली ने बल्लेबाजी करना उचित समझा। उनका फैसला सही साबित हुआ और वो 83 रन बनाकर अपनी खोई फॉर्म हासिल करने में कामयाब रहे। अब उनकी नजर शतक पर होगी। इससे पहले इस सीरीज में उनका सर्वाधिक स्कोर 29 रन था। अब भारत की स्थिति को लेकर रविंद्र जडेजा का कहना है,
अभी हम अच्छी पोजीशन पे है तो बस वही कि अब सेकंड इनिंग में जाके हमें उनको आउट करना है, तो मुझे नहीं लगता कि विकेट का कोई इसमें ज़्यादा फर्क था। मेरे ख्याल से जो नागपुर का विकेट था उससे तो ये अच्छा ही विकेट था।
तो दिल्ली में भारत बहुत ही मजबूत स्थिति में। उधर बैडमिंटन के कोर्ट पर आखिरकार भारत के के श्रीकांत अपनी लय हासिल करने में कामयाब रहे और वो इंडोनेशियन मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। शीर्ष वरीयता के साथ खेल रहे के श्रीकांत ने सेमीफाइनल में कल इंडोनेशिया के गिटिंग एंथनी को 37 मिनट में ही 21-13, 21-19 से मात दी। अब फाइनल में उनका सामना दूसरी वरीयता हासिल इंडोनेशिया के टॉमी सुगियार्तो से होगा। वहीं रायपुर में खेले जा रहे वर्ल्ड हॉकी लीग फाइनल्स के सेमीफाइनल में कल भारतीय हॉकी टीम को बेल्जियम के हाथों 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। बेल्जियम के लिए चार्लियर सेड्रिक ने खेल के 5वें मिनट में गोल किया। अब फाइनल में बेल्जियम का सामना आज ऑस्ट्रेलिया से होगा।
तो अभी आप सुन रहे थे आदेश कुमार गुप्त के साथ खेल समाचार, और अब वक्त हो चला है प्रमुख समाचारों का।
बीबीसी समाचार। तमिलनाडु में बाढ़ से प्रभावित राजधानी चेन्नई का मुख्य एयरपोर्ट आज दिन की उड़ानों के लिए खोल दिया जाएगा और बैंक भी कुछ देर के लिए खोले जाएंगे। लेक चार्ट द्वीप पर 3 आत्मघाती हमलों में कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई है और करीब 80 लोग घायल हुए हैं। इराकी सरकार ने मांग की है कि तुर्की उसके उत्तरी शहर मोसुल के निकट भेजे गए अपने सैनिकों को वापस बुला ले। ब्रिटेन में पुलिस के मुताबिक पूर्व लंदन के मेट्रो स्टेशन पर चाकू मारने की एक घटना हुई है, इसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि फिलहाल देश में चरमपंथी हमलों का गंभीर खतरा बना हुआ है। अर्जेंटीना में अधिकारियों ने 6 सीरियाई लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार ये लोग नकली ग्रीक पासपोर्ट्स पर अर्जेंटीना में दाखिल हुए। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि इस महीने के आखिर में सीरिया में हो रहे युद्ध को ख़त्म करने पर बातचीत का नया दौर न्यूयॉर्क में शुरू होगा। इस बातचीत में पिछले महीने वियना में जो समझौते हुए थे उन पर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।